नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेविड पॉल कुन की द हार्ड हैट राइट एक राजनीतिक इतिहास की पुस्तक है, जो 8 मई 1970 को न्यूयॉर्क सिटी के निचले मैनहट्टन में हुई हिंसक टकराहट को अमेरिकी राजनीति के बड़े बदलावों के भीतर रखती है। उस दिन निर्माण मजदूरों के एक समूह ने वियतनाम युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। घटना केवल सड़क की हिंसा नहीं थी, कून के लिए यह उस बढ़ती दूरी का दृश्य रूप था जो संगठित मुख्यतः श्वेत जातीय श्रमिक समुदायों और युद्ध विरोधी छात्र तथा नए उदारवादी आंदोलनों के बीच बन चुकी थी। पुस्तक रिचर्ड निक्सन, नगर प्रशासन, पुलिस, यूनियन नेतृत्व और प्रदर्शनकारियों की परस्पर भूमिकाओं को जोड़कर बताती है कि कैसे एक स्थानीय घटना राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतीक बन गई। इसका उद्देश्य हार्ड हैट राइट को आधुनिक संस्कृति युद्धों, डेमोक्रेटिक पार्टी के पुराने गठबंधन के विघटन और रिपब्लिकन पार्टी के श्वेत ब्लू कॉलर मतदाताओं की ओर झुकाव की पृष्ठभूमि के रूप में समझना है। यह किसी एक पक्ष का सरल महिमामंडन नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान, वर्ग, देशभक्ति और सत्ता के संबंधों की पड़ताल है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले 8 मई की हिंसा और उसके तत्काल सामाजिक संदर्भ। पुस्तक का केंद्र 8 मई 1970 की वह घटना है जब लगभग 200 निर्माण मजदूरों ने लोअर मैनहट्टन में युद्ध विरोधी छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। प्रदर्शन निक्सन द्वारा कंबोडिया में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने और कैंट स्टेट में छात्रों की हत्या के बाद उठी राष्ट्रीय असंतोष लहर का हिस्सा था। हार्ड हैट पहने मजदूरों के लिए यह क्षण अलग अर्थ रखता था। अनेक लोग ऐसे पड़ोसों से आए थे जहां सैन्य सेवा, पुलिस के प्रति सम्मान, धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय ध्वज का महत्व गहरा था। उन्हें लगता था कि प्रदर्शनकारी सैनिकों, देश और पारंपरिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। कून इस अनुभव को दर्ज करते हुए हिंसा को उचित नहीं ठहराते। वे दिखाते हैं कि आक्रोश किस तरह लंबे समय से जमा सांस्कृतिक अपमान, युद्ध से, निजी जुड़ाव और सामाजिक दूरी से बना था। कई प्रत्यक्ष विवरणों में पुलिस की निष्क्रियता या सहानुभूति भी सामने आती है, जिससे शक्ति संतुलन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हो गया। इस तरह रायट वर्ग संघर्ष का सीधा उदाहरण भर नहीं बनता। यह दर्शाता है कि वर्ग की राजनीतिक चेतना देशभक्ति, पीढ़ी, जातीय समुदाय और युद्ध के अनुभव से भी आकार लेती है। स्थानीय तनाव ने हिंसा को जन्म दिया, लेकिन उसका अर्थ तुरंत राष्ट्रीय बहस में बदल गया। दूसरा, पुराने डेमोक्रेटिक गठबंधन में श्रमिकों और नए उदारवादियों की दरार। कून हार्ड हैट राइट को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट युग से बने डेमोक्रेटिक गठबंधन की दरार के संकेत के रूप में पढ़ते हैं। 20वीं सदी के मध्य में शहरी कैथोलिक, आप्रवासी मूल के और यूनियन से जुड़े श्वेत श्रमिक डेमोक्रेटिक राजनीति का महत्वपूर्ण आधार थे, लेकिन नागरिक अधिकारों, शहरी संकट, अपराध, युद्ध, शिक्षा और सांस्कृतिक बदलावों ने इस संबंध को जटिल बना दिया। पुस्तक का तर्क यह नहीं कि श्रमिकों ने केवल आर्थिक हितों के कारण दल बदला, बल्कि वे स्वयं को उन शिक्षित, युद्ध विरोधी और सामाजिक रूप से उदार समूहों से अलग महसूस करने लगे, जिन्हें वे डेमोक्रेटिक नेतृत्व में बढ़ता प्रभावशाली मानते थे। राइट में आमने सामने आए लोग अक्सर आर्थिक रूप से एक ही व्यापक शहरी दुनिया से जुड़े थे, फिर भी उनकी भाषा, जीवन अनुभव और राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग थीं। कून इसे पुराने और नए उदारवाद के टकराव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस ढांचे की आलोचना भी हुई है, क्योंकि कुछ समीक्षकों के अनुसार यह कहानी अभिजात उदारवादियों और श्रमिकों के बीच संबंध को जरूरत से अधिक सरल बनाती है। फिर भी पुस्तक की उपयोगिता इसी प्रश्न में है कि क्यों आर्थिक वर्ग की साझा स्थिति राजनीतिक एकता की गारंटी नहीं देती। सांस्कृतिक सम्मान और प्रतिनिधित्व की भावना कई बार मजदूरी या कल्याण नीति से अधिक निर्णायक बन सकती है। तीसरा, निक्सन की साइलेंट मेजोरिटी रणनीति और रिपब्लिकन पुनर्संयोजन। पुस्तक बताती है कि रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकारों ने हार्ड हैट राइट को केवल न्यूयॉर्क की अव्यवस्था के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसमें एक नए चुनावी अवसर का प्रतीक देखा। निक्सन की साइलेंट मेजोरिटी की भाषा उन मतदाताओं को संबोधित करती थी जो स्वयं को मेहनतकश, देशभक्त और सार्वजनिक अव्यवस्था से परेशान मानते थे। हार्ड हैट मजदूरों की छवि इस संदेश के लिए असाधारण रूप से उपयोगी थी, क्योंकि वे परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक श्रमिक आधार से जुड़े माने जाते थे। व्हाइट हाउस ने यूनियन नेताओं से संपर्क किया और बाद में न्यूयॉर्क के निर्माण श्रमिक नेता पीटर ब्रेनन निक्सन प्रशासन में श्रम सचिव बने। कून का व्यापक तर्क है कि इस क्षण ने रिपब्लिकन पार्टी को पुराने सामाजिक अभिजात वर्ग की पार्टी से ब्लू कॉलर श्वेत मतदाताओं के लिए अधिक आकर्षक मंच बनने में मदद की। इसका अर्थ यह नहीं कि एक ही राइट ने दशकों का राजनीतिक परिवर्तन पैदा कर दिया। नस्लीय राजनीति, दक्षिणी पुनर्संयोजन, आर्थिक बदलाव और पार्टी रणनीतियां भी निर्णायक थीं। फिर भी यह घटना उस परिवर्तन का अत्यंत प्रभावी दृश्य और प्रचार योग्य संकेत बनी। पुस्तक समझाती है कि राजनीतिक दल अक्सर किसी जटिल सामाजिक असंतोष को एक सरल सार्वजनिक कहानी में बदलते हैं। यहाँ कहानी थी व्यवस्था पसंद मेहनतकश नागरिक बनाम विशेषाधिकार प्राप्त उग्र प्रदर्शनकारी। चौथा, पहचान, देशभक्ति और युद्ध ने वर्ग राजनीति को कैसे बदला। द हार्ड हैट राइट की मुख्य बौद्धिक उपलब्धि यह है कि वह श्वेत कामगार राजनीति को केवल आय, नौकरी या यूनियन सदस्यता के आधार पर नहीं समझती। निर्माण मजदूरों की प्रतिक्रिया में वियतनाम युद्ध का निजी और भावनात्मक स्थान था। उनके परिवारों, मित्रों और समुदायों के लोग सेना में सेवा कर चुके थे या कर रहे थे, इसलिए युद्ध विरोध को वे कभी कभी नीति असहमति के बजाय सैनिकों के प्रति अनादर के रूप में देखते थे। ध्वज, हेलमेट, कार्यस्थल की कठोरता, पुरुषत्व और पड़ोस की निष्ठा जैसे प्रतीक इस भाव को मजबूत करते थे। कून के वर्णन में यही प्रतीक बाद में निक्सन की राजनीति के लिए उपलब्ध संसाधन बनते हैं। यहां महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। किसी श्रमिक की देशभक्ति उसे स्वतः किसी खास दल का समर्थक नहीं बनाती, लेकिन जब राजनीतिक विरोधी उसकी पहचान को पिछड़ा, हिंसक या अशिक्षित मानकर खारिज करते प्रतीत हों, तो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया चुनावी व्यवहार बदल सकती है। पुस्तक इसी तंत्र को उजागर करती है। साथ ही घटना की हिंसा यह चेतावनी भी देती है कि पहचान आधारित राजनीतिक लामबंदी लोकतांत्रिक असहमति को खतरनाक शत्रुता में बदल सकती है। कुछ आलोचक कून पर इस सांस्कृतिक चोट को बहुत केंद्रीय बनाने का आरोप लगाते हैं। पाठक के लिए यह आलोचना उपयोगी है क्योंकि इससे पुस्तक के तर्क को आर्थिक, नस्लीय और संस्थागत कारकों के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है। अंत में, न्यूयॉर्क सिटी का सूक्ष्म इतिहास और आज के संस्कृति युद्धों की पृष्ठभूमि कून राष्ट्रीय पुनर्संयोजन की कहानी को एक शहर के सूक्ष्म इतिहास के माध्यम से कहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में नगर प्रशासन, पुलिस, यूनियनों, वॉल स्ट्रीट, कर्मचारियों, छात्रों और चर्च से जुड़े समुदायों की अलग अलग निष्ठाएं थीं। राइट के दौरान पुलिस की सीमित या पक्षपाती प्रतिक्रिया के आरोपों ने यह दिखाया कि कानून व्यवस्था स्वयं भी राजनीतिक अविश्वास का विषय बन सकती है। बाद की रैलियां, सिटी हॉल पर दबाव और ध्वज को लेकर विवाद ने स्थानीय तनाव को सार्वजनिक नाट्य में बदल दिया। इस नाट्य को राष्ट्रीय मीडिया और निक्सन प्रशासन ने व्यापक अर्थ दिया। पुस्तक की समकालीन प्रासंगिकता यही है। यह डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने वाली श्वेत गैर महाविद्यालयी मतदाता राजनीति की एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है, बिना यह दावा किए कि वर्तमान को केवल 1970 से समझा जा सकता है। पाठक देख सकता है कि संस्कृति युद्ध अचानक नहीं उभरते, वे तब गहरे होते हैं जब आर्थिक असुरक्षा, संस्थाओं पर अविश्वास, नस्लीय तनाव, युद्ध की स्मृति और पारस्परिक सांस्कृतिक तिरस्कार एक साथ जुड़ते हैं। पुस्तक का सूक्ष्म दृष्टिकोण इसे केवल राष्ट्रपति राजनीति की कथा बनने से बचाता है। यह बताती है कि राष्ट्रीय दलों की बड़ी रणनीतियां अक्सर शहरों, कार्यस्थलों और सड़कों पर बने अनुभवों से शक्ति पाती हैं। निष्कर्ष में, द हार्ड हैट राइट उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो वियतनाम काल, न्यूयॉर्क सिटी का इतिहास, अमेरिकी श्रम राजनीति या रिपब्लिकन मतदाता गठबंधन के परिवर्तन को समझना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान, इतिहास और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को इसमें एक उपयोगी अध्ययन मिलेगा कि किसी हिंसक स्थानीय घटना का अर्थ मीडिया, दलों और नेताओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निर्मित किया जाता है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह वर्ग को एक स्थिर आर्थिक श्रेणी मानने से रोकती है। यह दिखाती है कि सम्मान, देशभक्ति, सैन्य सेवा, जातीय पड़ोस और सांस्कृतिक दूरी चुनावी निष्ठाओं को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इसे आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना जरूरी है। कुछ इतिहासकारों और समीक्षकों ने चेताया है कि श्वेत श्रमिकों को केवल उपेक्षित उदारवादी पीड़ितों के रूप में देखना नस्ल, सत्ता और श्रमिक राजनीति की जटिलताओं को कम कर सकता है। यही बहस पुस्तक को और उपयोगी बनाती है। समान विषय की व्यापक राजनीतिक इतिहास पुस्तकों की तुलना में कून की खासियत एक निर्णायक दिन पर केंद्रित गहन कथा है। वे सड़क की भिड़ंत, नगर राजनीति और व्हाइट हाउस की चुनावी गणना को एक ही विश्लेषणात्मक ढांचे में रखते हैं। इसलिए यह पुस्तक न तो केवल रायट का वर्णन है, न केवल निक्सन की जीवनी का अंश। यह बताती है कि लोकतंत्र में प्रतीकात्मक घटनाएं लंबे समय तक दलों, पहचानों और सार्वजनिक स्मृति को बदल सकती हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड पॉल कून, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।